प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि बेबीलोन के पतन की भविष्यवाणी हुई और याकूब के घराने को परमेश्वर की अंतिम पुकार सुनी और आज हम उससे आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। यद्यपि कि हम दूर में रहते हैं, फिर भी रेडियो के माध्यम से एक साथ आपके वचन का अध्ययन करना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो निश्चित रूप से प्रत्येक के जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं। पिताजी, आप उन्हें भी अपनी शांति और चंगाई प्रदान करें ताकि प्रत्येक जीवन आपको धन्य कहने पाए, आज अपने वचन से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यशाया की पुस्तक उसके 49 अध्याय से अध्ययन करेंगे जिसका विषय है संसार को प्रभु यीशु का प्रबोधन, इसराइल के साथ परमेश्वर का विवाद और विषय में परिवर्तन, इसराइल के उत्पीड़कों को दंड। मेरे मित्रों, यशाया की पुस्तक के इस अंतिम तीसरे भाग के तीन विभाजन हैं जिन्हें दुष्ट के लिए शांति नहीं, मेरे परमेश्वर का यही वचन है, इस पद के द्वारा विभाजित किया गया है। हमने पहले भाग में यहोवा की शांति के विषय देखा है जो उस दास के द्वारा आएगी। अध्याय 49 दूसरे भाग का आरंभ करता है जिसे मैं यहोवा उद्धार कहता हूँ जिसका आगमन दुखी दास के द्वारा होता है। अब हम प्रभु यीशु मसीह के एक विशेष रूप को देखने जा रहे हैं, परमेश्वर का दुखी दास। हम आरंभ ही से इस प्रकाशन की ओर अग्रसर हैं, परंतु पहले हमने उसे एक पार्श्व छाया के रूप में देखा था, एक दास जो परमेश्वर की प्रजा को शांति देता है। हम अध्याय 53 के जितना अधिक निकट आते हैं जहां प्रभु यीशु के क्रूस का अद्भुत प्रकाशन है, उतना ही अधिक वह हम पर स्पष्ट होता जाता है। इसराइल परमेश्वर का दास है परंतु वह चूक गया है। अब परमेश्वर एक और दास के बारे में कहता है जो प्रभु यीशु मसीह है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण होशे की पुस्तक 11 अध्याय उसके एक पद में है, लिखा है, जब इसराइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। इससे भविष्यवाणी की पूर्ति प्रभु यीशु में हुई है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 15 पद में, इसराइल देश तो चूक गया परंतु उसी देश से एक निकलने वाला नहीं चूकेगा। अब हम आगे देखेंगे संसार को प्रभु यीशु का प्रबोधन। मेरे मित्रों, इस अध्याय के आरंभ में हम प्रभु यीशु का प्रबोधन उसी सच्चाई में देखेंगे जैसे गलील में यीशु के 12 शिष्य सुनते थे। इस अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु संसार का मुक्ति दाता प्रकट होने के लिए उभर रहा है। इस गतिविधि में इसराइल बाहर नहीं है, क्योंकि स्वदेश में उसका पुनः स्थापन निश्चित किया गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत प्रबोधन की तुलना में दूसरा नहीं है जो इस संसार के धर्मों में पाया जाए। यहाँ एक मनुष्य है जो संसार को देख रहा है और ऐसे देख रहा है जैसे परमेश्वर का दास जो संसार का मुक्ति दाता होकर आया है। प्रत्येक धर्म या कोई भी संस्था किसी न किसी जाति या जातीय समूहों से संबंधित होता है। ये धर्म जिसे हम मनुष्य ने बनाया है प्रायः एक जाति या एक मानवीय वर्ग या एक देश की सीमाओं के पार नहीं जाते हैं, अतः उनके देवी देवता भी स्थानीय होते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन का परमेश्वर जीवित है, वह जगत का सृजनहार है और मनुष्यों का उद्धार करता है। यह तथ्य हमारे समक्ष उपस्थित इस प्रबोधन को निश्चय ही विशेष बनाता है। तो आइए हम पढ़ें यशाया की पुस्तक 49 अध्याय उसके 1 पद में, जहां पर लिखा है, हे दीपो मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। प्रभु यीशु संसार की जातियों को सुनने के लिए पुकार रहा है। उसे उसके जन्म से पूर्व ही यीशु नाम दिया गया था और इस नाम की घोषणा संपूर्ण संसार में की जानी थी, क्योंकि यह उद्धारकर्ता का नाम है और संसार एक उद्धारकर्ता की बाट जोह रहा है, अर्थात उसे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यशाया की पुस्तक 49 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। उसके मुख से निकलने वाली धारदार तलवार परमेश्वर का वचन है। जब वह इस पृथ्वी पर था तब उसके बैरी कहते थे, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 46 पद में पढ़ते हैं, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। इस दास का प्रकाशन इन शब्दों में है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय के 15 पद में, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। यह परमेश्वर के वचन द्वारा सब जातियों को दंड है। मेरे प्रियो, उसकी पहचान पर आप ध्यान दें। यशाया 49 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, और मुझसे कह, तू मेरा दास इसराइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। यह इसराइल देश और प्रभु यीशु के विषय सत्य है। अब एक अद्भुत वाक्य है यशाया 49 अध्याय के 4 पद में, तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु यीशु का परित्याग किया गया और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका परिश्रम व्यर्थ गया, परंतु उसका भरोसा परमेश्वर में था। प्रभु यीशु की तो मृत्यु ही विजय थी, और सच तो यह है कि उसकी मृत्यु आज तक संसार की सबसे बड़ी विजय है। अतः इस भाग में मुख्य विषय सेवक अर्थात दुखी सेवक है। जब वह पहली बार आया था तब वह इसराइल को एकत्र नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने उसका त्याग किया था, परंतु उसने उस समय इससे भी अधिक महान कार्य किया, संसार के उद्धार का कार्य। अतः परमेश्वर के उद्देश्य मनुष्य के तुच्छ षड्यंत्र के कारण प्रभावित नहीं हुए। मेरे मित्रों, हम यशाया 49 उसके 5 पद में पढ़ते हैं, अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इसराइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। मैं आपसे कहता हूं कि यह पद परमेश्वर के वचन का सर्वाधिक अद्भुत पद है। यशाया 49 उसके 7 पद में लिखा है, जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है, और जो अपराधियों का दास है, उससे इसराइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इसराइल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। रोमियो की पत्री 11 अध्याय में पौलुस 12 पद में कहता है, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। इसराइल द्वारा प्रभु यीशु के परित्याग के कारण सुसमाचार पृथ्वी की छोर तक पहुंचा है। अब कल्पना करें कि भविष्य के उस दिन जब परमेश्वर इसराइल को एकत्र करेगा तो वह दिन कैसा महान होगा। इसराइल के साथ परमेश्वर का विवाद, और तब हम देखेंगे इसराइल के पुनः स्थापन के इस अंश से मैं परमेश्वर के विवाद संबंधित कुछ ही पदों पर विचार व्यक्त करूंगा। आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए यशाया 49 अध्याय उसका 8 पद। यहोवा यूं कहता है, अपने प्रसन्नता के समय मैंने तेरे सुन ली, उधार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की, मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में कर दे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु की प्रार्थना सुनी और इसराइल द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया। यही प्रभु है जिसके समक्ष सब राजा दंडवत करेंगे और प्रत्येक घुटना झुकेगा तथा प्रत्येक जीभ यह अंगीकार करेगी कि तू ही प्रभु है। यशाया 49 अध्याय के 13 पद में आगे हम पढ़ते हैं, हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। मेरे मित्रों, परमेश्वर इसराइल को पृथ्वी का केंद्र बनाने की इच्छा रखता है। जब वे सब पुनः अपने देश इसराइल में होंगे तब स्वर्ग और पृथ्वी आनंद मनाएंगे। आज संसार में सब कुछ अपनी जगह से हटा हुआ है। इसराइल को अपने देश आशीषों के स्थान में होना है और परमेश्वर की सेवा करना है, परंतु वे नहीं करते हैं। कलिसिया को तो अब तक प्रभु यीशु के पास स्वर्ग में होना था, परंतु वह अभी तक पृथ्वी पर ही है। शैतान को नरक में होना था, परंतु वह तो पृथ्वी पर घूमता और फिरता रहा है और खोज रहा है कि किसे पकड़े और फाड़ खाए। प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर सिंहासन पर बैठकर पृथ्वी पर राज्य करना था, परंतु वह अभी परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। ऐसी अनेक बातें हैं जिनका यथास्थान स्थापन आवश्यक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उचित ही लिखा है, परमेश्वर स्वर्ग में है, संसार में सब ठीक है, परंतु यह हमारे संसार में सुसंगत नहीं है। जी हाँ, यहां तक कि इसराइली भी सोचते हैं कि वे परमेश्वर द्वारा त्याग दिए गए हैं। यशाया की पुस्तक 49 अध्याय उसके 14 से 16 पद में लिखा है, परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कैसा महान आश्वासन है कि परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं है। इसराइल परमेश्वर को त्याग दे जैसा वे आज भी करते हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें कभी नहीं त्यागेगा। मेरे प्रियो, यदि आपको अभी भी संदेह है कि परमेश्वर इसराइल का पुनः स्थापन नहीं करेगा, तो मैं आपके मनन हेतु ये पद आपको सुझाता हूं। विषय परिवर्तन पर हम देखेंगे कि इसराइल के उत्पीड़कों को दंड। यशाया 49 अध्याय के 22 पद में लिखा है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा, तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। परमेश्वर इसराइल को विश्वास दिलाता है कि उनके स्वदेश स्थापन में अंततः अन्य जातियां भी सहयोग देंगी। अब तक तो अन्य जातियों ने उन्हें अपने देश से उजाड़ा था, अतः यह आज भी एक अद्भुत भविष्यवाणी है। बर्तानिया ने यहूदियों के लिए अपने देश के द्वार नहीं खोले थे और बर्तानिया ने ही उनके प्रवेश निषेध का अध्यादेश भी जारी किया था, जिसके कारण उन्हें अनुमति बिना पानी के जहाज से आना पड़ा था और तब से ही उन्हें कहीं ना कहीं बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अन्य देशों से निकालने के लिए सताया जा रहा है। रूस में उनकी संसार की तीसरी सबसे बड़ी संख्या वास करती है और रूस उन्हें छोड़ना नहीं चाहता है, परंतु उन्हें यहूदी विरोध की पीड़ा में देखता रहता है। परंतु अंतिम दिनों में परमेश्वर उन्हें उस दिन स्वदेश लौटा लाएगा और वह अन्य जातियों को उनके स्वदेश लौटने का साधन बनाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर अध्याय 49 समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ते हुए अध्याय 50 में देखेंगे, जिसका विषय है इसराइल के परित्याग का कारण, इसराइल द्वारा प्रभु यीशु का इनकार। प्रभु यीशु का इनकार उनकी सबसे बड़ी बाधा है। आशीषें पाने से पूर्व उन्हें इस बाधा को हटाना होगा। वह उन्हीं में से एक था और उनका मसीहा बनकर आया था। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पाते हैं, यूहन्ना कहता है 1 अध्याय उसके 11 पद में कि वह अपनों में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर इसका कारण बताता है। यशाया की पुस्तक 50 अध्याय के 1 पद में लिखा है, तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था, या मैंने किस व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यूं कहता है, सुनो तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। ध्यान दीजिए, मूसा की व्यवस्था के अनुसार पुरुष छोटी छोटी बात पर अपने पत्नी को तलाक दे सकता था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 24 अध्याय उसके 1 पद के अनुसार, एक निर्दयी एवं कठोर दिल पुरुष इस प्रावधान का लाभ उठाकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था। परमेश्वर इसराइल से कहता है कि क्या वे परमेश्वर द्वारा त्यागे जाने का कारण जानना चाहते हैं? निश्चय ही परमेश्वर न तो निर्दयी है और न ही पाशविक। इसराइल को परमेश्वर की पत्नी की उपमा दी गई है। होशे के अनुसार, जो एक नबी है, यह परमेश्वर की उमंग नहीं थी कि इसराइल का त्याग करे, परंतु परमेश्वर अति स्पष्ट कहता है कि उनके पाप के कारण उनके परित्याग की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो आइए हम पढ़ें यशाया 50 अध्याय के 2 पद में, इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ, उनकी मछलियां जल बिना मर जाती और बसाती हैं। मेरे प्रियो, जब मैं आया, ऐसा कब हुआ कि परमेश्वर अपने भविष्यद वक्ताओं की अपेक्षा सीधा उनके पास आया कि उसका ऐसा स्वागत हो? मूसा को व्यवस्था देते समय वह सीनै पर्वत पर उतरा था, तब उसने उनसे स्वागत के लिए नहीं कहा। उस समय तो उसने उन्हें दूर रहने की चेतावनी दी थी, वह उनके मध्य एक दीन मनुष्य बनकर आया था, परंतु उन्होंने उसका स्वागत नहीं किया। इसराइल ने न तो उसके जन्म पर और न ही उसके सेवा काल में उसका स्वागत किया था। उन्होंने अपने मसीहा का त्याग किया, वरन उसकी हत्या कर दी थी। पेंतिकोस के दिन पत्रस ने कहा था, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 22 से 24 पद में, हे इसराइलियों, ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट हैं जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। परमेश्वर अति स्पष्ट कहता है कि उन्होंने अपने मसीहा को ग्रहण नहीं किया, इस कारण उन्हें त्याग दिया गया था। मेरे प्रियो, पुत्र परमेश्वर अपने अपमान की चर्चा करता है। यशाया की पुस्तक 50:4 में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। जिस नाम से सिद्ध सेवक परमेश्वर को संबोधित करता है वह प्रकाशक है, यहोवा अदोनी। प्रभु यीशु ने स्वयं को अपने लोगों पर यहोवा अदोनी रूप में प्रकट किया। वह पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए दीन बना। मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता था। किसी ने पूछा कि प्रभु यीशु 30 वर्ष तक क्या कर रहा था। इसका साधारण सा उत्तर है कि वह बढ़ई का काम करता था, परंतु यह आधा ही उत्तर है। दूसरा आधा उत्तर है कि वह परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता था। यह कैसी महान बात है! यदि यीशु को परमेश्वर के वचन के अध्ययन की आवश्यकता थी तो हमारे बारे में क्या कहा जाए। मेरे विचार में हमें इसे गांठ बांधना है। यह मूर्खता की बात है कि कहें, मैं आरंभ से अंत तक पूरी बाइबल पर विश्वास करता हूं, मैं जान देकर भी इसकी रक्षा करूंगा, जबकि हम उसका अध्ययन नहीं करते हैं। यदि परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय के 21 पद तक बातें की हैं, तो कहीं तो परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए संदेश होगा। मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर हमसे कुछ कहता है तो हमें उसकी बात सुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हों। वह हमें बचाने के लिए आया, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए आया। आज जब हम अपनी आंखों को संसार की ओर उठाकर देखते हैं तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप इस संसार में किस प्रकार से जी रहे हैं। क्या आप परमेश्वर के उस भय में, उस डर में, उस वचन को सीखने और समझने में व्यतीत कर रहे हैं, या आप इस संसार के साथ शामिल होकर के उसमें आनंद उठा रहे हैं? आज आपके लिए और मेरे लिए मौका है कि हम इस पर विचार करें और जानें कि सत्यता क्या है। आज लोग पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पढ़ना और जानना नहीं चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं। वे दूसरों की सुनना चाहते हैं लेकिन स्वयं से परिश्रम करना नहीं चाहते। आज हमारे लिए दुखद बात है। आइए आज इस वचन के प्रकाशन में हम अपने आप को जांचें और आज एक निर्णय लें कि प्रभु आप हमारी सहायता करें ताकि हम आपके वचन की सत्यता को समझ सकें। मेरे प्रियो, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। यीशु मसीह।